શ્રેષ્ઠતમ મનુમતિ સચિતુત્ર સ્વરૂપ રૂપમ તુરી રાધાકુંડમ દિર્ગરમહો પતિતાનં પામયેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો મહાવદનાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાય કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામ્ને ગુરવે ગૌરચંદ્રાય રાધિકાયૈ તદાય કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ભક્તાય कल हम लोग मैंने प्रश्न उठाया कुछ प्रश्न मैंने किया कृष्ण ब्रज को छोड़ करके प्रेम भूमि को छोड़ करके ऐश्वर्य भूमि मथुरा में क्यों आए और आए तो फिर लौट जाते इस कार्य समाप्त होने पर लौटे नहीं कभी कभी आ जाते आए नहीं जहां पर जाना चाहिए स्वयं नहीं जाकर के अपने दूत को भेजा फिर चौथी बार कृष्ण तो सर्वसमर्थ हैं एक ही रात में समस्त मथुरा वासियों को लेकर के द्वारका में उपस्थित हो गए तो क्यों नहीं उन ब्रजवासियों को भी अपने मथुरा में ही डाल आते और वहीं उनसे रहते इन प्रश्नों का उत्तर आज हम देंगे जो हमारे गोस्वामियों ने उसका वर्णन किया जिसका हमारे हमारे परम मान्यवर पूज्यवर चतुर्वेदी ने सनातन गोस्वामी का नाम लिया सनातन गोस्वामी उनके अनुगत्य में जीव गोस्वामी और उनके अनुगत्य में हमारे श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर बहुत ही मार्मिक श्लोकों की व्याख्या मैं उनसे थोड़ा सा उठ कर कुछ बोलने का प्रयास मैं विद्वान नहीं हूं कभी लोग कागज के घोड़े को भी आकाश में उड़ा सकते हैं इनकी कविता की महिमा है तो हमारे चतुर्वेदी जी असामान्य असाधारण कवि भी हैं देखो ना हमारे जैसे कागज के घोड़े को कैसे उड़ा दिया आकाश में ये महिमा ये भीड़ को भी महान बना सकते हैं महान को भी नीचे उतार सकते हैं ये कविता निकाल अब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को गुणहीन और कहां पहुंचा दिया तो इसके पहले ब्रज की स्थिति क्या है जो मथुरा कृष्ण इसके संबंध में हमारे श्रीमान शिव कुमार जी कुछ बोलिए 10 मिनट
Thank you. जहां पर सुहा Yeah. उस समय लंग पहले से कहा नहीं थे, अब तो मैं जीव की नहीं, अब तो मरुण के विषय मेरे मन के बाद एक काम करना ना तो
मनरो लागे
Let's
Thank you. संजय का महाभारत हुआ, संजय का दृष्टि भगवान की दृष्टि बने गए
प्रश्न किए जरा शीर में कम आए बहुत कम लगाए वृंदावन प्रेम की भूमि है, माधुर्य भूमि है, मथुरा है सत्य की भूमि है। प्रेम भूख को भूमि को छोड़ करके कृष्ण ऐश्वर्य की भूमि मथुरा में क्यों आ गए? यहां प्यार मिलता है वही आदमी रहता, इसलिए आए क्यों? कृष्ण का स्वभाव कुछ निराला है, हम लोग जैसा उनका स्वभाव नहीं है। उनकी प्रतिज्ञा है ये जथान माम प्रपत्म तथा भेजा गोपियां तो अपने आर्य धर्म को पति को लोक धर्म को निंदा इत्यादि को भी छोड़कर कृष्ण के चरणों में एकांत रूप से आए। कृष्ण के लिए संभव है या नहीं? ये संभव नहीं है। कि जो गोपियां हैं उनका प्रेम तो अद्भुत है, इसीलिए वो मथुरा वृंदावन में ही आबद्ध नहीं रहेंगे। अपनी मैया को कैसे छोड़ सकते, पिता को कैसे छोड़ सकते? मथुरा के जो भक्त हैं देवकी और वसुदेव को कंस ने हथेड़ी हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ रखा है, पत्थरों से उनके हृदय में आघात करता है, गाली गलौज करता है। उसको बचाने की जरूरत है कि नहीं बचाने की जरूरत है? वो कैसे घुस सकते हैं? कृष्ण के लिए इन्होंने जीवन धारण किया है, उनको कैसे छोड़ दें? इसके अतिरिक्त और भी भक्त हैं कैसे छोड़ देंगे? द्वारकावासियों को छोड़ देंगे इसलिए उनका स्वरूप ही ऐसा है। और कहा भी उन्होंने न पारे हम निर्बद्ध, हे गोपियों देवताओं की करोड़ों वर्ष की आयु पा करके तुम्हारा उम्र नहीं हो, तुम अपने आप अपनी कृपा से ही हमारे ऊपर में प्रसन्न होकर के मुझे उम्र कर सकते। इसलिए मथुरा में जाना भी आवश्यक हो गया देवकी और वसुदेव के अपने और भव। तो फिर लौटे क्यों नहीं, कंस को मारा, उनका बंधन छुड़ा दिया, फिर लौटाना चाहिए, काम अधूरा था, इसलिए लौटे नहीं, काम को पूरा करके ही लौटना है। वो काम क्या, कंस की दो स्त्रियां अस्ति नास्ति
प्राप्ति,
वो अपने पिताजी के पास में पहुंची, जरासंध मगध का राजा उसके पास में पहुंची, वहां बलवान बोली तुम्हारे दामाद तो मंच पर बैठे हुए थे, दंगल देख करके आनंद ले रहे थे, और ये कृष्ण ऊपर मंच पर सिंह की भांति लपक गया, टूट गया और उसको गिरा करके मार डाला, ये कुछ भी नहीं बोला, हम लोगों को मार पीट करके धमका करके भगा दिया गया और बहुत सी बातें की, किंतु कंस ने इतना उत्पात किया ये सब कुछ नहीं था। कंस बिगड़ गया, जरासंध बिगड़ गया और बदला लेने की सोची, और वो प्रतिवर्ष अपने सारे सैन्य समाज को जुटाकर मथुरा पर आक्रमण करता, कैसी जाए, कब वो आक्रमण कर देगा, इसलिए नहीं गए। दूसरा भी कारण था, हम आगे और बतलाएंगे, और किसलिए नहीं गए और भी एक कारण था, ये गंभीर दूसरा कारण, यदि कृष्ण कभी लौटे, एक दो दिन रह करके लौट आए और फिर मथुरा में आकर के जरासंध से युद्ध इत्यादि कार्य करें, ये भी संभव नहीं। विरह एक ऐसी चीज है जो क्षण भर के लिए गए तो ये विरह का ज्वर और अधिक बढ़ जाता है, गोपियां इसको संभाल नहीं सकते। क्या तात्पर्य, जैसे तवा जल रहा हो और उस पर एक बूंद पानी छिड़क दिया जाए वो छन्न करके उड़ जाएगा, ठीक वैसे ही गोपियों का प्रेम ऐसा है जो लोहे की तवे की तरह भांति उनके विरह के वाला में जल रहा है। और कृष्ण एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए, एक दिन के लिए, दो दिन में आएंगे, उनका विरह का ज्वर इतना अधिक बढ़ जाएगा जो कृष्ण संभाल नहीं सकते, इसलिए आकर के भी फिर लौटे नहीं। अरे कभी कभी तो आ जाते तो विरह की विधि से नहीं गए, डर के मारे स्वामी न जाकर के दूत भेजा, किस लिए भेजा, कई माता पिता और हमारे ब्रजवासी लोग मेरे विरह में मर न जाएं, जाकर तुम को याद दिलाओ मैं आऊंगा। जाते समय कृष्ण ने दूत के माध्यम से अथवा स्वयं अपने वाणी रूपी दूत के माध्यम से गोपियों को यह धैर्य दिलाया, आयास से मैं आऊंगा। गोपियां जानती हैं, नंद बाबा जानते हैं, जो सत्यवादी कृष्ण है वो जरूर आएगा, किंतु कब आएगा, इसलिए प्राणों को धारण नहीं कर सकते। इसलिए दूत के द्वारा यही याद दिलाते हैं कि तुम लोग घबराओ नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, थोड़ा सा काम बाकी है। इसलिए फ्री ब्रजवासियों को क्यों नहीं बुलाते? ये रस संकट, रस संकट क्या इसको समझिए। रस संकट क्या है? मथुरा में कृष्ण का क्षत्रिय वेश, हाथों में वाण धनुष रख सकते हैं, चक्र रख सकते हैं, शंख चक्र गदा भी धारण कर सकते हैं, किंतु वृंदावन में गोप वेश बेनू कर, हाथ में मुरली रहेगी, मोर पंख रहेंगे। मथुरा में ये संभव नहीं। नवकिशोर नटवर गोप वेश, नंद बाबा हमारे पिता हैं, मैया हमारी यशोदा जी हैं, मैं गोपियों का प्राण पल्लव हूं, ये अभिमान होता है। मथुरा में बंसी साथ नहीं जाएगी, मोर मुकुट धारण नहीं करेंगे, और वहां पर अभिमान है क्षत्रिय वेश में, देवकी नंदन वसुदेवी नंदन। इसलिए वो उनको बुलाने से फिर क्या होगा गोपियों को और नंद बाबा को? क्षत्रिय वेश उनको अच्छा नहीं लगता, उनको तो वेश गोप वेश में ही बंसी में हाथों मोर मुकुट के साथ ही में उनको पसंद है। एक बार मैं मथुरा में दर्शन करने के लिए गया, हमारे साथ में हजारों आदमी थे, तो वहां पर एक छोटा सा भाषण मैंने दिया कि राधा जी ने आदेश दिया है जाकर के देखो तो वहां पर मथुरा का सचमुच में राजा बना हुआ है, हमें याद करता है कि नहीं, और उसकी क्या स्थिति है जरा देख करके आए। हम राधा जी की दासी छेरी हम लोग आए हैं देखने के लिए, उसे बातचीत करना चाहते थे, कुछ स्मरण कराना चाहते थे, किंतु द्वारकाधीश मथुराधीश वो तो अपने मंदिर में छिप गया है, निकलता नहीं है लज्जा के मारे, उसमें उनका पट बंद होता है, छिप गया है। मैं ब्रजवासियों को क्या मुख दिखलाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करके आया। तो वहां के जितने लोग थे बड़े प्रसन्न हुए, सारा ढेर प्रसाद इत्यादि हमको दिखे। तो मथुरा में क्षत्रिय वेश और वहां पर माधुर्य वेश गोप वेश पहनू पर। मथुरा के जादव लोगों के जो पर देवता है, पर देवता उनके परम देवता है, उनको भोग लगाते हैं, कृष्ण को पर देवता समझते हैं सभी, उनके आराध्य देव हैं, और वृंदावन के गोपों के स्वजन हैं, नंद बाबा के यशोदा जी के बेटे हैं, नंद बाबा की खड़ाऊं सिर पर लेकर के थई थई नाचते हुए चलते हैं, गोपों के जूठ को खाते हैं। कोई मथुरा द्वारका में ऐसा है जो कृष्ण को अपना जूठा खिला दे? ये संभव नहीं। ये सब ऐश्वर्य भूमि है, मथुरा में माधुर्य भूमि है, वृंदावन में माधुर्य। जादव लोग कृष्ण की चरण की धूली को अपने सिर पर लेते हैं, और ब्रज में गोपियां अपने चरणों के रस से कृष्ण का अभिषेक करती हैं, चरण में महावर लगा करके गोपियां राधे राधे लिख देती हैं, और वो श्रीमती राधिका जी पैरों का छाप उनके सिर पर दे देती हैं, ये मेरे हैं। कितना सुंदर सब भाव है। देवी और वसुदेव, जब कृष्ण ने कंस को मारा, वसुदेव देवकी वहीं पर थे, उनकी बेड़ी हथकड़ी हटा दी और उनके चरणों में प्रणाम किया कृष्ण ने, और बलदेव जी ने वसुदेव जी को प्रणाम करके उनकी गोदी में बैठ गए, किंतु वो प्रणाम नहीं ग्रहण कर सके। ये तो साक्षात नारायण है, ऐश्वर्य भाव है। जो कंस जो नागार्जुन हजार हाथियों के बल से भी बलशाली, उसको एक सेकंड के अंदर में उसको परलोक में सिधार दिया, ये कैसे सुना? इस तरह से देवकी मैया और वो संकुचित हो गए और उनको प्रणाम करने लगे। यशोदा जी को विश्व ब्रह्मांड मुख में देख लाया, यशोदा जी ने क्या, हमारे बच्चे को किसी भूख लग गया या चूना कर दिया, ब्राह्मण को बुलाया, लाखों गायें दान की और काली गैया के मूत्र से और गोबर से मिला करके काली गैया के पूछ से उनका अभिषेक करके वो भूत और चूना दूर किया गया। देखो कितना अंतर है। दूसरी बात आप ये रखें, कृष्ण नहीं गए मथुरा के समस्त लोगों को लेकर के द्वारका में, जैसे एक रात नहीं चले गए, ऐसे सब ब्रजवासियों को, गोपों को, गोपियों को, नंद बाबा, जसोदा, श्रीमती राधिका, उनकी सहेलियों को सब रात ही रात में वहां पर पहुंचा लेते और उनके साथ में रहते, ये संभव नहीं। मतलब ऐश्वर्य भूमि है, यदि कोई फूल होता है, पुष्प होता है, अपने वृंत में ही वो फूलता है, विकसित होता है, प्रसन्न होता है, वृंत में नहीं, पेड़ के साथ में उनकी डालियों से संलग्न रहता है तो वो पुष्पित होता है, उसकी गंध होती है। और यदि आप उसके वृंत से, उसके डालियों से तोड़ लो तो क्या होगा, मुरझा जाएगा, उसकी सगंध दूर हो जाएगी, वो बच नहीं सकता। तो ये ब्रज की गोप गोपियां हैं, कृष्ण भले ही जाएं किंतु ये वृंदावन को, अपने वृंत को नहीं छोड़ सकते। यदि वहां जाएंगी और वहां पर कृष्ण की 16,000 रानियां बैठी हैं, महारानी कुब्जा जी वहां हैं, ये कैसे संभव है गोपी वहां पर जाए, इसलिए जा नहीं सकते, प्राण छोड़ देंगे किंतु वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। इस तरह से ये प्रश्नों का उत्तर हुआ। अब हम लोग नंद बाबा के पास और उद्धव जहां पर खड़े हैं, नंद बाबा कल आप लोगों को बतलाया कि कैसे कृष्ण के विरह में अधीन हो रहे हैं, कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे, किसी प्रकार से सूरसेन के पुत्र पशुदेव जी अपने मित्र को स्मरण कर रहे, वे कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करने लगे, स्मरण करते करते अधीर हो जाते तो कभी पनघट पर पहुंच जाते जमुना जी, और वहां पर जाते तो क्या देखते, सुना सुना, किंतु वहां पर कृष्ण के छोटे छोटे पांव उसमें चिन्ह है, देख करके छूटते जी, ऐसी कोई स्थान नहीं है ऐसा यहाँ कृष्ण ने रमा नहीं, विलास नहीं किया, जमुना में यहीं पर स्नान करते थे, उनका पीरा बढ़ जाता, गिरिराज में जाते उनको भूलने के लिए और स्मरण होता, ऐसा कोई वृक्ष नहीं, लताएं नहीं जिसके अंदर में, जिसके पास में कृष्ण ने गोपो और गोपियों के साथ में लीलाएं नहीं। मानसिंह गंगा, भांडीर बन, बरसाना इत्यादि जो स्थान है नंदमा, कहीं नहीं चैन मिले, और इस प्रकार से कहते कहते अधीर हो गए और जिद्दी उनकी बंद हो गई, बोल न सके। अब ये उद्धव जी अनुभव किया, वहां प्रेम की मूर्ति ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं, देखा नहीं, जैसे नंद बाबा को इतना, जो सोदा मैया इन बातों को सुन रही है और आंख बंद किए हुए, आंखों से अश्रु धाराएं बह रही हैं, स्तन से दूध बरगला रहा, कुछ बोल नहीं पा रही, नंद मामा जो सोच रहे हैं जिनको सांत्वना कैसे दे, बड़े रो करके अधीर हो रहे हैं, उन्होंने सोचा जी मैं कहूं नंद बाबा रोइए मत, तो ये सांत्वना कैसे होगी, रोइए मत, शास्त्र हमारा मुख बंद कर देंगे, क्यों, यदि कृष्ण के लिए आंखों में एक बार एक भी आंसू छलक आया, गिर गया तो उसका जीवन सफल हो गया कृष्ण के लिए, और ये कृष्ण के विरह में तड़प करके इतना रो रहे हैं, इनको कैसे कहूं जे तुम मत रो, तो क्या कहूं,
खूब रहो
महाराज, आप धन्य हैं, कृष्ण के लिए रोए, खूब रोइए, ऐसा भी तो नहीं कर सकता, ये सांत्वना नहीं होगी, ये कृष्ण के आदेश के विरुद्ध होगा, ऐसा भी नहीं, किंतु कहूं तो क्या। बृहस्पति जी के शिष्य जैसे अभी चतुर्वेदी जी ने बताया, कृष्ण के मित्र कितने बुद्धिमान, उनकी बुद्धि में नहीं आया कि मैं क्या कहूं उनको सांत्वना दूं, किस शब्दों में, किन शब्दों में, अंत में बरबस उनके मुख से निकल गया, ओहो आप बड़े सौभाग्यवान हैं, ओहो यूयम सुमपूर्णार्थ भवत्तो लोक पूर्ण, जगत में यदि कोई सौभाग्यवान है आप और यशोदा है, क्यों कृष्ण जो विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं उन प्रभुओं का भी प्रभु है, स्वयं भगवान हैं, आज तुम्हारे पुत्र रूप में आए हैं और पुत्र जैसा तुम लालन पालन कर रहे हो, तो उनको उन कृष्ण को अपना स्तनपान यशोदा जी करा रही है, आपके समान ऐसा कौन सौभाग्यवान, और उनके लिए उस प्रभु के लिए इतना प्रेम हमने आज तक देखा और सुना नहीं, शास्त्र में भी वर्णन है। गेहूं कहा नंद बाबा जी और रोने लगे और रोते हुए कहे, अरे बेटे मैंने समझा तुम कृष्ण के मित्र हो, सचमुच में बुद्धिमान हो, किंतु मैं देखता हूं कि तुम अभी बालक है, अब प्रेम को तुम समझ नहीं सका, जीवन का महत्व तुमने समझा नहीं। मैंने तो समझा, मनी मन में सोच रहे हैं क्यों, वासुदेवे भगवती जासाम अत्यर्पितम मनः, हा कृष्ण के प्रति आपका चित्त अर्पित है, तान मान धन वचन व अन्नाभिलाषिता श्लोक है, इसमें पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है, तो दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा, ऐसी कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम होना असंभव है। भगवत उत्तम श्लोक है, भौतिक भी उत्तम, आज आप लोगों ने विरहीन में महाभागा गोपियों के लिए उद्धव जी ने पीछे कहा, तो नंद बाबा कह रहे हैं अभी तक तुमको अकल नहीं हुई, कैसे, देखो किसी को कांच का एक टुकड़ा मिल जाए, मिलने के बाद देखा जी बड़ा सुंदर सुकांत है, किसी ने बताया ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये तो कोहिनूर हीरा है, और कुछ देर के बाद में किसी ने उसको उठा लिया, चुरा लिया, अब वो तड़पता है उसके लिए, अरे ये तो कोहिनूर हीरा था, मैं तो कृष्ण को अपना बेटा जानता था केवल, और कुछ नहीं जानता था, और तुम कह रहे हो बड़े ज्ञानी हो ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये विश्व की जोनी है, सबके घट घट में रमता है, अंतर्ज्ञानी है, और मैंने उसको पुत्र मान लिया है, भाव उद्भव थोड़ी सी बुद्धि होती तो तुम सोच सकता था, क्या आज कृष्ण स्वयं भगवान हमारे घर में पुत्र के रूप में आए और मैं सेवा से उनको प्रसन्न नहीं कर सका, प्रसन्न मैं नहीं कर सका, हुआ क्या हमसे वो रूठ कर या हमारी सेवा से असंतुष्ट होकर के जहां उनको प्रेम मिलता है वहीं पर वो चले गए, इसलिए हमारे अंदर में प्रेम कहां, अरे हाँ पिता तो एक था, कौन पिता था, महाराज दशरथ, राम के योग वियोग में हाराम हाराम और हाराम, इसके बाद में हाराम नहीं आया और वो स्वर्ग लोक को सिधार गया, आ मेरा ये हृदय वज्र से बना है, मैं अभी मर नहीं गया, मरता क्यों नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं, ये कह करके सारी रात उनसे वार्तालाप हुई, उद्धव ने समझाया पीछे से, वो तो सबका अंतर्यामी है, आप उसको पुत्र मान रहे हैं, इत्यादि रात भर ऐसे ही बातें होती रही। सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ उद्धव जी, पासी में कृष्ण कुंड है नंदगांव में, जाने पर वशिष्ठ के पास कृष्ण कुंड में स्नान किया, और पासी में ललिता कुंड और कुंज है, पासी में उद्धव क्यारी है, उद्धव क्यारी उद्धव क्यारी है। जिस दिन से कृष्ण ब्रज में पधारे उस दिन से वो उसी वन में घर में नहीं लौटी। जोग माया ने उनकी प्रतिकृति कर करके उन गोपों के पास में रख दिया जिनसे वो विवाही, और किसी ने नहीं समझा गोपियां वन में रही, विरह में तड़पती रही, मरके नहीं गई, क्योंकि चित्त उनका अपने हृदय में नहीं है, शरीर में नहीं है, वो तो कृष्ण के पास में रख दिया, इसलिए कृष्ण के पास रख दिया तो वो मरे कैसे। या कृष्ण ऐसा समझते हैं इनको तड़फा करके मुझे बड़ा आनंद आता, फिर दूसरा ऐसा तड़फाने जो तड़फे मेरे लिए वो कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं इनका मन इनका प्राण अपने पास रखूं और इन ये तड़फे और हम देखें, मानो ऐसा तड़फ रही है मर रही है, किस लिए आशा में अटका हुआ है उनका प्राण, क्या आयास से मैं आऊंगा, इसलिए प्राण उनके निकलते हैं। जब वो स्नान किया और उधर देखा तो जोग माया ने उनको दिखला रही गोपियां यहां पर हैं, गोपियां आपस में बात कर रही है, क्या बात कर रही है, बात कर रही, अरे ये सोने का रथ किसका आया, कौन आया, क्यों आया, अखरूट तो सोने के रथ में आया था, हमारे प्राणों को हर ले गया, किस लिए आया, दूसरी सखी ने बतलाया, आया है कुछ जरूरत है क्या, कंस मारा गया उसको पिंड दान करना है, और वो पिंड दान करेंगे आप मथुरा में, पिंड कुछ नहीं मथुरा में, पिंड नहीं, जय हो जय हो, आपकी जय हो, बैठिए पधारिए, तो मथुरा में पिंड नहीं जिसको दान करें, तेरहवीं में पिंड दान होता है, पिंडदान कैसे हो, भेजा है शायद अक्रूर को, अक्रूर आया है रथ लेकर के सोने पर चढ़ करके, पिंड के लिए हम लोग कृष्ण के विरह में मर जाएंगी, और सारा पिंड हृत पिंड लेकर के ले जाएगा और उसका वो पिंड देगा, इसलिए दूसरी गोपी कहती है ये आया है ये कृष्ण का दूत है मालूम पड़ता, कृष्ण जैसा ही श्यामला है, उनकी वनमाला लेकर के आया है, उनके वस्त्र भी धारण किए हैं, श्याम है किंतु श्याम नहीं, श्याम ही है श्याम नहीं, कैसे जान गए ये दूत है, अरे हमारी जो नाक है वो अभ्रंत है, कृष्ण के सुगंध को पहचानती है, ये जो वनमाला से सुगंध आ रही, उसके वस्त्रों से जो सुगंध आ रहा है, ये कृष्ण के अंगों का ही गंध है, इसलिए कृष्ण के दूत के अतिरिक्त और कुछ नहीं, तो यहां क्यों आया, माता पिता के पास में जाता यहां क्यों आया, ये कहते हैं हमसे तो कोई संबंध नहीं, मानो तो संबंध है, नहीं तो संबंध नहीं, इसलिए ही आया, इसलिए हमारे पास में आने के, उद्धव तुम उधर जा, हमारे आने की कोई जरूरत नहीं, अरे वो संबंध था उसने खत्म कर दिया और हमारा संबंध भी टूट गया, हम तो उसको भूलना चाहती हैं, केवल भूल नहीं पाती उसकी कथा, इस प्रकार से कहते कहते उद्धव जी वहां पर पहुंचे गोपियों के समाज में, और गोपियों के समाज में जब पहुंचे गोपियों को देखा, राधा जी को देखा, जैसा कि श्रीमान हमारे विश्वेश महाराज ने फूलों की सेज पर सोई है कमल के, वो चूरमूर हो गए। चंदन लगाया गया है शीतलता के लिए, किंतु वह सूख करके चूर्ण हो गया। प्राण है या नहीं देख रही हूं, रूई से देखा चल तो रहा। थोड़ी देर के बाद उद्धव पहुंच गए, बैठ रहे हैं दूर से, और इतने में एक भ्रमर गुंजार करता हुआ राधा जी के चरण कमलों को पद्म समझता हुआ, कमल समझता हुआ वहीं पर कुछ मरड़ाने लगा, मानो उस कमल में प्रवेश होगा रस चूसेगा, मधु के लोभ से राधा जी को चरण कमल वहीं पर धारण करने लग गया। ध्यायंती कृष्ण संगमम, और वो जो सेज पर सोई श्रीमती राधिका जी हैं, ध्यायंती क्या ध्यान कर रही है, बिना किसी कामनी के रह नहीं सकता। वो मथुरा में गया है, वहां जागरण की हजारों रमणियां हैं, पत्नियां हैं, अद्भुत अद्भुत सुंदर हैं, हमसे भी सुंदरी होगी, शायद उसी में रंग गया। और इनका ये काला दूत आया अपने गुल्फों में वही कुमकुम लगा करके, जिसको गोपियां लगाती हैं कृष्ण के चरणों में या उनकी माला में लग गया, वहीं से उठ करके आया। हाँ में विभोर हो गई, जल्प प्रजल्प अनुजल्प जल्प इत्यादि करने लगी दिव्य उन्माद में। उनके अतिरिक्त दिव्य उन्माद थोड़ा सा वर्णन किया गया है द्वारका के रानियों में, थोड़ा सा, किंतु पूर्ण दिव्य उन्माद और उसकी अवस्था में कैसी इनकी अवस्था होती है उसी में ये भ्रमर गीत का गायन हुआ। इसको अब थोड़ी देर के बाद निर्णय करता हूं।
अरे इनको कष्ट क्यों दे रहे हैं, आने जाने में इनको कष्ट होगा,
कष्ट नहीं होगा महाराज जी, आनंद मिलेगा, आपका आशीर्वाद कैसे जाएंगे। और भजन के प्रारंभ में मैं यहाँ की व्यवस्था में जो आप श्रृंगार देख रहे हैं, वो श्रृंगार किया है श्रीमती चारू जी ने, वो अपनी हमारे निवेदन पर महाराज जी के चरणों में अपनी भावांजलि जिसके रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे।
आपका नाम मैंने सुना है, आपका आशीर्वाद, आप कैसे हैं,
और आपके सीरियलों में भी आपके कीर्तन सुने हैं, बहुत आप धन्य हैं,
कृपा करिए
आपको,
आप सबकी कृपा रहे तो ठीक रहेगा,
बहुत शीघ्र
बैठेंगे ना थोड़ी देर, कार्यक्रम में रहेंगे ना,
बेटी तुम्हारा सफल भक्ति हो,
प्रसिद्ध गायिका है हेमलता,
हेमलता जी।
वृंदावन का कृष्ण का सबकी आंखों का प्यारा
अभी
यही कीर्तन आज करना आज वही करें
महाराज जी के दर्शन करके ही ऐसी विभूति है महाराज जी का दर्शन करके सारे कष्ट दूर हो रही है मन में ये व्यवहार लगता है और अब श्रीमती चारुषिता रानी जी मैं चाहूंगा कि आप सब कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करें और बड़े उन्हें आशीर्वाद दें सारा श्रृंगार उन्होंने किया बड़े भाव से हम ये गायिका के रूप में न दे करके एक भावी के रूप में देते हैं और ज्यादा से निवेदन करेंगे कि एक सूचना है मेरे पास मुझे अभी मैं बाहर गया था तो एक किसी मारुति कार की गाड़ी की चाबी मिली हुई है इस महान भावकिनों को से आपके लिए
Yeah.
Thank you.
आपका पहुंच रहे हैं
Thank you. Yeah. Thank you. Y aquí a Thank you. Oh, she's a Hare Rama, Hare Rama.
परमानंद की स्थिति में इन शब्दों में श्री रविंद्र जयंती को लगातार की दूसरी महिला को आभार व्यक्त करूँ। हर जीव यहाँ पर जो विराजमान हर आत्मा से आपके प्रति आभार की आपने हरि भक्तों को हरि रथ में रंगते हुए हरि सत्संग करते हुए हमारे गुरुदेव की प्रार्थना करते हुए स्तुति करते हुए हम सबको परमानंद दिया। बहुत 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 आभार। समय का काल है 8 बजे ये हमारे समापन का समय होता है। क्या मैं गुरुदेव से श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से आज्ञा को समापन करने का या उनके अंतर मन में कोई और भाव है?
मैं गोपी अपने भावों को उनकी दरअसल नामों को मैं आप लोगों के सामने अभिव्यक्त करना चाहता था, किंतु इस बार नहीं हुआ। ये प्रभु की इच्छा ही है कि अगले बार कभी आऊं तो विस्तार के साथ इन चीजों का वर्णन कर। प्रेमपुरी में भी हमने आरंभ किया था किंतु पूरा नहीं हो सका, ये पूरा होने वाला भी नहीं है। मैंने ये सब चीजें विशेष करके श्रीमद् भागवत का पंच प्राण राष्ट्र लीला है, मैं समझता हूँ उसकी भी अभिव्यक्ति गोपी गीत में, वेणु गीत में और विशेष करके भ्रमर गीत में श्रीमती राधिका जी के हृदय हृदय की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यदि श्रीमद् भागवत से इन प्रसंगों को निकाल दिया जाए, श्रीमद् भागवत निगम फल पत्र का यह प्रेम परिपक्व फल नहीं बन जाएगा। जैसे भी हो, उद्धव जी ने गोपियों का यह जब गीत सुना, भ्रमर गीत, कृष्ण को बहुत गालियां भी दे रही है एक तरह से, उनको भूत स्वर्थ प्रतारक यहाँ तक कि लंपट तक भी कह रही है, हम उनको भूल जाना भी चाहती हैं, किंतु ये हरि कथा जो कृष्ण की कथा है उसको भूल नहीं सकती। बड़ी विचित्र सब बातें हैं, इस बार को मैं पूरा नहीं कर सका, किंतु उद्धव जी इसको सुन करके मुक्त हो गए। वे उनकी स्तुति करने लगे, ओह गोपियों मैं बहुत ही सौभाग्यवान हूँ जो आपके विरहावस्था में जो निकली हुई गीत हैं जो सारे विश्व को कल्याण कर सकते हैं, आज हमारे ऊपर में बहुत उपकार किया। और वंदना करने लगे, आशा महो चरण रेणुकाम, मैं वृंदावन की कोई भूल लता भी बन जाऊं जिस पर गोपियां विचार के समय अपने चरणों की धूली हमारे सिर पर रखें, जो श्रुतियों के लिए भी दुर्भिज्ञ है उनके लिए भी संभव नहीं। वो गोपियां कृष्ण को एक छाछ पर नचाती हैं, गोपियों ने कृष्ण का ही चित्त चुरा लिया, कृष्ण तो चुराए या न चुराए, उनकी वंदना करने लगे, यहां तक ही वंदना करते हैं, जा वही आप तक आमई जो वैश्वरई रवि सदात्मनि राश गोस्त्यं कृष्णस्य तत् भगवति चरणारविन्दं नस्तं तनेष्टि यहो उपनि। तात्पर्य क्या है, गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा इत्यादि शंकर सब लोग ध्यान में भी चरण कमलों को ध्यान में भी नहीं ला पाते, उन चरण कमलों को साक्षात रूप में रास के समय में अपने स्तनों पर डरती डरती उसको रख रही, ऐसा सौभाग्य किसका होगा। विशेष करके कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेम भिक्ष्म सह जासाम हरि प्रभो की नाम। यहां पर वंदे नंद नंद ब्रज स्त्री नाम नंद की समस्त ब्रज रमणियों को ये प्रणाम कर रहे हैं, किंतु यहां पर भूमि एक वचन है वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेम, एक वचन किस लिए, किसी एक की चरण की धूलि चाहते हैं वो कौन होगा, आप लोग विचार करके ध्यान दे सकते हैं वो कौन है, श्री कृष्ण बल्लभा, कृष्ण को वशीभूत रखने वाली ये श्रीमती राधिका जी उनके चरणों की धूलि की कामना कर और वंदना करके उनकी चरणों की रज को उठा की ब्रज में नहीं रहे, गोपियों के भावों को भी न लग सके, गोपियों की पाठशाला में भी भक्ति नहीं हो सके, किंतु कुछ भाव तो उनके आए, गोपियों से पूछा गोपियों मैं कृष्ण से जाकर के क्या कहूं, क्या कहूं जो आपके बिना गोपियां और ब्रज मर रहा है, एक बार बोले दो बार बोले तीन बार बोले, श्रीमती राधिका जी ने कहा मत कहना उनसे जो आपके विरह में गोपियां तड़प रही हैं और मर रही हैं, ब्रजवासी लोग मर रहे हैं, क्यों कृष्ण का जो हृदय है वो मक्खन से भी कोमल, यदि उन्होंने सुन लिया कि गोपियां हमारे विरह में तड़प करके प्राण छोड़ रही हैं तो वो बेचारे अपने प्राणों को छोड़ देंगे, हम तो नहीं छोड़ रहे, कृष्ण हमारे विरह में मथुरा में तड़प रहे हैं हमने सुना किंतु मर नहीं गई, किंतु तुम उनसे जाकर के ये मत, बड़े आराम से आनंद से हैं उत्सव मना रही हैं आपको भूलने की भी चेष्टा कर रहे हैं, और एक दिन में मत कहना, जैसे पुराना कपड़ा हो जाता है उसको पानी निचोड़ने से वो फट सकता है, इसलिए धीरे धीरे कृष्ण को हमारी विरह की बात कुछ कुछ बतलाना, किंतु ये मत बतलाना है तुम्हारे जीवन में, हाँ कहना क्यों तुम्हें भूल चुके हो भूल रही हो, उद्धव जी सोच रहे कि कैसे कहूं कैसे कहूं, कृष्ण के पास में गए और यहाँ की बातों को एक दिन में नहीं दो दिन तीन दिन में नहीं थोड़े थोड़े समय के अवकाश के समय बतलाते थे, और कृष्ण विरह में डूबे, गोपियों ने संदेश नहीं भेजा, भेजा किसने संदेश, जिसको गरज है इसी से समझ सकते हैं ये कृष्ण की कैसी प्यारी इनकी भावनाएं कैसी है, यही मैंने अन्नादिलासिता श्लोक से भक्ति के तारतम्य प्रेम के तारतम्य से आरंभ किया, ध्रुव से ध्रुव प्रहलाद हनुमान जी पांडव लोग और उद्धव जी और अंत में उद्धव जी के भी आराध्या कृष्ण की आराध्या प्रेम की गुरु श्रीमती राधिका के भाव तक लेकर के मैंने समापन किया, यदि इसमें थोड़े से भी भावों को ले सके गोपियों का भाव आ जाए तो आप लोगों का जीवन सार्थक हो जाए, जैसे बतलाया है राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम मर्यादा को किंतु कृष्ण क्या है रसिक से, इसलिए कृष्णमय राम जी राष्ट्र नहीं कर सकते, जो आया उसको किसी को भी मना नहीं कर सकते, राम के पास में कोई आए प्रार्थना करे अच्छा कृष्ण लीला में मैं जब कृष्ण होऊंगा तब हमारे साथ में रास कर, इस लीला में नहीं, इसलिए स्वयं भगवत्ता में सब लोगों ने एक स्वर से इसको स्वीकार किया, एक चांस कला पुरुष कृष्णस्तु रस के आधार, इसलिए उनके चरणों में मैं वंदना करके आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, किंतु उसके पहले मैं सब श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। यदि ऐसे रसिक श्रोता नहीं रहते तो ऐसी रसिक कथाएं नहीं, इनकी वंदना। इसके आयोजक मैं उस सबका नाम तो नहीं जानता, आयोजक में हमारे नारायण जी बैठे हैं, उन आयोजकों का नाम ये बतलाएंगे जो आयोजन करने वाले हैं। आयोजन में किसी प्रकार से पैसे से रुपये से बात से जो सहायता किया, और ये राधा कृष्ण के गुणगान को करने वाले कीर्तनिया लोग जो अपनी रसमयी कीर्तन की वर्षा से सबको हरे में रंग में रंग दिया, इन संकीर्तन करने वाले विशेष करके सूरदास जी का नाम हमने सुना, अरे सूरदास वल्लभाचार्य वाले, उनसे इनको कम नहीं दिखता। ये सचमुच जैसा इनका नाम है ऐसा ही इनका गुण है। इनको भगवान निरोग पूर्वक आयु दें और कृष्ण लीलाओं का ये प्रचार करें, और सबको मैं आशीर्वाद करता हूँ कृष्ण से, हे कृष्ण इनको अपनी प्रेममयी भक्ति, गोपियों की प्रेममयी भक्ति आप बताओ। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य
गुरुदेव के पवित्र मुखारविंद से तीन दिन के इस सत्संग में सुख क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है और प्रेम क्या है, जीवन के लिए तीन तत्वों की विवेचना हुई। और मैं विश्वास दिलाता हूँ महाराज जी को कि हमने बहुत ध्यान से इन तथ्यों का आपके आपकी मुखार